समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी और उन खास हस्तियों को भी आज के अंक में हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रम्या। रम्या, आपको भी नमस्कार।
Namaskar and a very good afternoon to you, Sir Firozi, and a very good afternoon to all the lovely listeners who have tuned into Parikrama on FM Gold at 100.1 MHz. As Sir Firozi said, I'm Ramya, and she and I are going to bring you a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes, but first we'll begin with the news headlines.
जी बिल्कुल रम्या, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शिक्षा नीति और परिसीमन के मुद्दों पर हंगामे के साथ शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।
Vanuatu Prime Minister orders to revoke fugitive Lalit Modi's passport.
भारत ने चीन और जापान से आने वाले जल उपचार रसायनों पर $986 प्रति टन तक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया।
12 people killed and 26 injured in two separate accidents in Madhya Pradesh and Maharashtra.
और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट से होगा।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we will talk about India's ICC Champions Trophy 2025 victory. Sir Firozi, what a wonderful night we have had yesterday, where history has been made once again. Team India has etched their name into the record books, lifting the ICC Champions Trophy for an incredible third time after a stunning 4-wicket victory over New Zealand in the grand final at the Dubai International Cricket Stadium. As the sun set and the floodlights blazed to life, the Dubai Stadium transformed into a sea of blue, with the voices of Indian fans echoing throughout the night. And what a moment it was when Ravindra Jadeja struck the winning blow, sending the whole crowd into an absolute frenzy. But it wasn't just him. The entire team played their hearts out to chase down that 252-run target with an over to spare. Talk about nerve-wracking cricket, Sir Firozi.
जी बिल्कुल रम्या, और ये उन यादगार पलों में से एक है जो इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने फिर से नया कारनामा कर दिखाया है। टीम ने 2002 और 2013 में अपनी जीत के बाद तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीत लिया है, और रम्या ये एक बड़ी उपलब्धि है जिसने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम के रूप में भारतीय टीम की जगह पक्की कर दी है। और कहना पड़ेगा रम्या कि क्या शानदार सफर रहा और किस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया की ओर से देखने को मिला।
बिल्कुल, और अगर आपने मैच शुरुआत से देखी हो तो जो ओपनिंग पेयर है जिन्होंने आग लगा दी थी, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, दे जस्ट लिट अप द स्टेडियम विद अ ब्लिस्टरिंग 105 रन पार्टनर for the first wicket. Indian skipper with his outstanding innings of 76 out of 83 balls, which was filled with 3 sixes and 7 fours, Rohit led the team from the front. With his signature pull shot against Kyle Jamieson, he got off to a huge six on his second delivery.
और रम्या बात करें ओपनर शुभमन गिल की, तो उन्होंने पहले विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी खेली, लेकिन ग्लेन फ्लिप्स ने एक्स्ट्रा कवर पर उनका कैच लपक लिया। और असली कहें तो कारनामा तब देखने को मिला, प्रदर्शन जब विराट कोहली, जिन्हें हम सभी उनकी प्रतिभा के लिए जानते हैं, तो बदकिस्मती से वो एक रन पर ही LBW होकर आउट हो गए और उसके बाद प्रशंसकों के चेहरे पर भी और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के चेहरे पर भी एक तनाव झलकने लगा था।
पर उसके बाद जो स्किपर रोहित शर्मा ने जो डिलीवर किया
जी
His 76 runs were a crucial contribution as he blazed away at the top of the innings. And while New Zealand fought back with disciplined bowling, India's middle order stepped up. Akshar Patel and Shreyas Iyer showed incredible resilience, with Iyer making a key 48-run knock.
और फिर बात करें हार्दिक पांड्या की जिन्होंने 18 रन बनाए तो भारत कहीं ना कहीं जीत के करीब पहुंचता दिखा और फिर आए केएल राहुल जो 29 रन बनाकर नाबाद रहे और उसके बाद जडेजा ने विजयी शॉट मारा और ये वो क्षण था जब भारत ने जीत अपने नाम कर ली थी।
बिल्कुल एंड डिजर्वेडली सो रोहित शर्मा द हिटमैन वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द मैच फॉर हिज मैच विनिंग 76 एंड न्यूजीलैंड्स रचिन रविंद्र द टूर्नामेंट्स डबल सेंचुरियन अर्नड प्लेयर ऑफ the series honors for his outstanding performances throughout the tournament.
Well, it's been amazing. Firstly, we wanted to bounce back after a tough Australia tour, wanted to win a big tournament, and we ended up doing that. So it's an amazing feeling, lovely playing with the bunch of such amazing youngsters, so much talent in the change room, and you know, they're taking Indian cricket forward in the right direction.
और न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 252 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भारत के सामने रखा था। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने रम्या पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कई तरह के देखे जाए तो कयास भी जो प्रशंसक हैं क्रिकेट लवर्स हैं उनकी तरफ से कई कयास लगाए जा रहे थे कि जो टॉस पहले जीतेगा या जो बल्लेबाजी करने का ऑप्शन लेगा तो उसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। इस तरह के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे तो न्यूजीलैंड ने भी मजबूत शुरुआत की। उनके सलामी बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में दिखे, 7.4 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 57 रन पर। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन देखा जाए तो भारत के स्पिनरों के भी अपने कुछ प्लान्स चल ही रहे थे और चक्रवर्ती और कुलदीप शर्मा ने कई महत्वपूर्ण विकेट लिए। मिशेल के कुछ प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने 101 गेंदों पर 63 रन बनाए। न्यूजीलैंड अपने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 251 रन बनाने में सफल रही और देखें भारतीय गेंदबाजों की ओर से खासकर स्पिनरों ने शानदार प्रदर्शन किया, महत्वपूर्ण मौकों पर महत्वपूर्ण विकेट लिए और मैच को कड़ा बनाए रखा। यानी जो भारतीय टीम थी चाहे स्पिनर हो या बल्लेबाज हो उन्होंने ऐसा माहौल बनाए रखने की कोशिश की कि कहीं से भी ऐसा न लगे कि अब जो मैच है वो न्यूजीलैंड की पारी में जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल एंड द मेन इन ब्लूज हिस्टोरिक विक्ट्री एड्स टू देयर ऑलरेडी इम्प्रेसिव लेगेसी मार्किंग इंडियाज सेकेंड आईसीसी ट्रॉफी इन एज years. After the T20 World Cup triumph last year, they have now conquered the Champions Trophy, cementing their dominance on the world stage. Just 8 months and 10 days ago, India triumphed in the ICC Men's T20 World Cup 2024. T20 and now with this win they have made this history once again.
बिल्कुल रम्या और कल की जो जीत है वो भारतीय टीम उनके कोचिंग स्टाफ और दुनिया भर में जो उनके प्रशंसक हैं उनकी जीत है और भारतीय टीम की ओर से एक जज्बा एक दृढ़ संकल्प देखने को मिला।
जी जी
रम्या चाहे कोई अपने घर से क्रिकेट देख रहा हो या स्टेडियम से या कहीं से भी एक ऐसा पल था जिसका सभी ने आनंद लिया।
बिल्कुल
और कहना पड़ेगा कि भारत ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती है बल्कि अपनी विरासत को और मजबूत किया है।
बिल्कुल बिल्कुल और इंडियन स्किपर रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री बनाई। ही बिकेम जस्ट द सेकंड कैप्टन ऑफ हिज नेशन टू विन टू आईसीसी ट्रॉफीज आफ्टर इंडियाज विक्ट्री। ही प्रीवियसली लेड इंडिया टू विक्ट्री इन द 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन बारबाडोस। प्रायर टू रोहित इंडिया वन आईसीसी ट्रॉफीज अंडर द लीडरशिप ऑफ एमएस धोनी, दैट इज 3-1 अंडर सौरव गांगुली 1 एंड अंडर कपिल देव 1।
और रम्या रोहित की नेतृत्व क्षमता जो है उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और दबाव में रहकर अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता ने उन्हें विश्व क्रिकेट में एक बड़ा दिग्गज खिलाड़ी बना दिया है और अब हम ये कह सकते हैं कि आगे और भी बड़े मंच पर हम उन्हें खेलता हुआ देखेंगे।
बिल्कुल वाइल द T20 स्टेज में बिड फेयरवेल टू रोहित शर्मा द ODIs विल कंटिन्यू टू फीचर वन ऑफ द बेस्ट टू एवर वील्ड अ बैट। कैन इंडिया सिक्योर अनदर वर्ल्ड कप विद रोहित एट द हेल्म? ओनली टाइम विल टेल। But one thing is for sure, the hitman isn't going anywhere just as yet.
बिल्कुल रम्या और अब बात भारतीय क्रिकेट की धड़कन कहे जाने वाले विराट कोहली की जिन्होंने अपने भविष्य के बारे में अपने विचार साझा किए और उन्होंने युवा खिलाड़ियों को इस मौजूदा पीढ़ी को भविष्य की टीम बताया।
The This, my friends, is what cricket dreams are made of. India is on top of the world once again, and what a journey it has been. From the early breakthroughs to the explosive chase, every moment was pure cricket magic. And just like that, the ICC Champions Trophy is once again in India's grasp. Congratulations to our boys in blue and to every fan who cheered them on yesterday. The celebration continues. India champions once again.
और श्रोताओं, अब समय है आपको देश की परिक्रमा पर लेकर चलने का वक्त है और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। रम्या, कहां से शुरू करें?
जी सरफिरोजी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर का टुडे विजिट हो रहा है मॉरिशियस का 11 और 12 मार्च को। ही विल अटेंड द नेशनल डे सेलिब्रेशंस ऑफ मॉरिशियस ऑन 12th ऑफ मार्च एज द चीफ गेस्ट। अ कंटिंजेंट ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस विल पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशंस अलोंग विद अ शिप फ्रॉम द इंडियन नेवी। ड्यूरिंग द विजिट द प्राइम मिनिस्टर विल कॉल ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस, मीट द प्राइम मिनिस्टर एंड होल्ड मीटिंग्स विद सीनियर डिग्निटरीज एंड लीडर्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज इन मॉरिशियस। द प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो इंटरैक्ट विद द मेंबर्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन community. News Services Division of Akashwani spoke to Ambassador Rajiv Bhatia on his upcoming visit. Ambassador Bhatia also spoke about the close ties both the nations share. Let's listen to an excerpt from the interview. The interviewer is Deepanjan Roy Chaudhary, journalist.
It's a very important visit that is going to take place on Tuesday and Wednesday, March 11th and 12th, by Indian Prime Minister to a very important neighbor in the Indian Ocean region, Mauritius. Could you just throw some light on the significance of this visit and what can we expect from this visit?
Mauritius is a very important neighbor and a very friendly neighbor, which has always extended utmost cooperation and consideration to India. And in a similar manner, India also regards its relationship with Mauritius as of great significance. I think this is best reflected by the fact that Prime Minister Narendra Modi is going to Mauritius now as the chief guest for the Independence Day celebrations. Now, this is the best slot that a country can give to a foreign leader, a friend. So this will really, as the Prime Minister of Mauritius said while announcing the visit in the Parliament, that this is a testimony to the excellent relations which exist between India and Mauritius. So the importance is obvious, it is a historic importance. I think importance is further increased by the fact that only last year, President of India visited Mauritius. Then I think you asked the second question as to what we could expect. Now, I would not like to preempt what the leaders would talk and achieve, but it is very clear that the basic thrust would be to further deepen and enhance the relationship and cooperation. So I would not be surprised if through their high-level conversations, there is once again a new proximity in terms of views on global, regional and bilateral issues. And I would not be surprised if new projects of cooperation through which we can help the people of Mauritius are also announced. So in short, I can say that Mauritius is a very important neighbor. This is an important visit and we expect some very substantive results coming out from it.
तो सरफिरोजी, आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं?
अब चल रहे हैं महाराष्ट्र, जहाँ के धाराशिव जिले में एक गांव है वाखरवाड़ी। यहाँ की एक महिला रोहिणी सुरवसे ने महाराष्ट्र जीवन उन्नति अभियान उम्मीद अभियान के माध्यम से अपने एक एकड़ खेत में जैविक खेती का प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने मिट्टी परीक्षण और बीजोपचार के साथ अपनी गौशाला से तैयार जीवामृत, दशपर्णी अर्क और गौमूत्र से कीटनाशक तैयार कर उसका उपयोग शुरू किया। इससे उन्हें पर्याप्त आय होने लगी। 2017 में उन्होंने उम्मीद अभियान के माध्यम से 8 कृषि सखियों की सहायता से धाराशिव तहसील के 24 गांव में कृषि विद्यालय शुरू किया। एक कृषि सखी 3 विद्यालयों में मार्गदर्शन करती थी। रोहिणी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर लोगों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप आज लगभग 400 से ज्यादा महिलाओं ने अपने खेतों में जैविक खेती का प्रयोग शुरू किया है। अपनी इस सफलता के विषय में रोहिणी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत की।
मैं महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नति अभियान में लगभग 10 साल से काम कर रही हूँ। इसमें मैं क्लस्टर एग्रीकल्चर मैनेजर पद पर काम करती हूँ। मेरे अंदर 8 गांव के 8 कृषि सखी काम करती है। कृषि सखी के माध्यम से मैंने 24 गांव के लोगों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में, रासायनिक खाद के प्रयोग से उपजाऊ जमीन का बहुत नुकसान होता है, इसलिए मैंने हमारे खेत में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग करने का निर्णय किया और उसके मुझे मेरे खेत में बहुत से परिणाम मिले।
तो सर फिरोजी, अब हम आपको महाराष्ट्र से गुजरात लेकर चलते हैं।
जी,
कच्छ, once known for its dry terrain, is now embracing greenery through horticulture. The region's farmers are setting a shining example of self-reliance through dragon fruit cultivation. Our correspondent from Bhuj, Ashraf Nathwani, brings us this inspiring story of hard work and courage of the farmers of Kutch.
Kutch, traditionally known for its arid landscape, is now witnessing a surge in greenery due to horticulture. Following the success of Kesar Mango and Kutchi Kharek, farmers in Kutch have been exporting dragon fruit abroad for the past few years, setting an inspiring example of self-reliance nationwide. Prime Minister Narendra Modi has even highlighted this achievement in his Mann Ki Baat program. Native to Southeast Asia, dragon fruit, also known as Kamalam in Gujarat, is rich in fiber, vitamin C, iron, magnesium and other essential minerals. In the past, India relied heavily on imports from countries like Vietnam, Malaysia, Thailand and Sri Lanka, resulting in high prices. However, farmers of Kutch have taken the initiative to cultivate this fruit locally, starting in 2014. The variety grown in Kutch boasts a vibrant red-pink pulp and weighs between 150 to 800 grams. Farmers are yielding 4 to 5 tons per acre annually, generating an impressive income of rupees 3 to 4 lakh per acre. Many farmers in Kutch have embraced dragon fruit cultivation with remarkable success. Talking to Akashwani, M.S. Parsania, Deputy Director of Horticulture of Kutch, said farmers' interest in dragon fruit cultivation has increased significantly over the past 7 to 8 years. Currently, dragon fruit farming spans approximately 2,000 acres in Kutch. Mr. Parsania also said that the quality and demand for dragon fruit have led to substantial exports in recent years, benefiting farmers immensely. The cultivation of dragon fruit with its excellent yield and long-term benefits has become a game-changer for farmers of Kutch due to their courage, innovative spirit and adoption of technology. For Parikrama, Ashraf Nathwani, Akashwani News, Bhuj.
श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और वहां की भी हलचल ले लेते हैं।
बिल्कुल। सो सैफिरोजी, इन वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट, मुंबई इंडियंस विल टेक ऑन गुजरात जायंट्स एट द ब्रबोन स्टेडियम इन मुंबई दिस इवनिंग। द मैच इज शेड्यूल्ड टू बिगिन एट 7:30 PM IST। बोथ मुंबई एंड गुजरात हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड अ स्पॉट इन द प्ले ऑफ्स अलॉन्ग विद दिल्ली कैपिटल्स। हाउएवर, टुडेज मैच इज क्रूशियल एज इट कुड डिटर्मिन द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। दिल्ली कैपिटल currently leads the points table with 10 points, while Gujarat and Mumbai have 8 points each. However, Gujarat holds the second position due to a superior net run rate. Defending champions Royal Challengers Bangalore and UP Warriors have already been eliminated from the tournament. And now for some business news. The benchmark domestic equity indices today reversed initial gains and ended in negative territory amid weak global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, fell 217 points, almost 0.3%, to close at 74,115. The National Stock Exchange Nifty 50 also lost 92 points or 0.40% to settle at 22,460. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.2%, up at $70.55 per barrel. And now we will... And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Oh. Upon the evening of March the 10th, 1922, Mahatma Gandhi was arrested on charges of sedition by the British imperialist government for writing three politically sensitive articles in his weekly journal, Young India, published from 1919.
In his remarkable statement to the judge during the trial, Gandhi said,
I have come to the conclusion that it is impossible for me to disassociate myself from the diabolical crimes of Chauri Chaura. Non-violence is the first article of my faith, but I had to make my choice. I had either to submit to a system which I considered has done an irreparable harm to my country, or incur the risk of the mad fury of my people bursting forth when they understood the truth from my lips. I know that my people have sometimes gone mad. I'm deeply sorry for it, and I am, therefore, here to submit not to a light penalty, but to the highest penalty.
The judge, while sentencing Gandhi to 6 years imprisonment, observed,
In the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriot and a great leader. Even all those who differ from you in politics look up to you as a man of high ideals and of noble and even saintly life.
Mahatma Gandhi was lodged in the Yerwada prison in Pune. He was not allowed to sleep in the open and was even denied a pillow. But he devised one with books and spare clothes. He kept up his daily routine of prayers and spinning. Gandhi was released from prison after 2 years as he had to undergo an appendicitis operation in 1924.
We also remember revolutionary social reformer Savitribai Phule, who died on the 10th of March 1897. The pioneer of India's feminist movement, Savitribai worked to abolish the discrimination and unfair treatment of people based on caste and gender.
A philanthropist and an educationist, Savitribai's contribution to literature and culture was no less. She raised issues pertaining to caste and gender through her writings and speeches. She was probably among the first published modern radical Marathi poets and writers in modern India and was able to develop her own voice and agency at a time when women of all classes were suppressed. Savitribai used education as a cultural tool to liberate people from structural violence. Awake, arise and educate, smash traditions, liberate was a common refrain used in her poems.
In her poem titled, Go, Get Education, she wrote,
Be self-reliant, be industrious, work, gather wisdom and riches, all gets lost without knowledge. We become animal without wisdom. Sit idle no more. Go, get education, end misery of the oppressed and forsaken. You've got a golden chance to learn, so learn and break the chains of caste.
Savitribai was a revolutionary leader, and despite tremendous obstacles, she rose to become an inspiring and capable teacher, leader, thinker, and writer. We salute the great Indian.
आज हम गबर सिंह नेगी को भी याद कर रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है. ये भारतीय सैनिक थे. प्रथम विश्व युद्ध में मरणोपरांत विक्टोरिया प्रास प्राप्त करने वाले गढ़वाल उत्तराखंड के वीर सपूत थे. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गबर सिंह नेगी 39वीं गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन में राइफलमैन थे. 10 मार्च 1915 को फ्रांस में न्यूवे चैपल नामक स्थान पर जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध के मोर्चे पर असीम साहस वीरता के लिए गबर सिंह नेगी को ब्रिटिश सरकार ने सर्वोच्च सैन्य पदक विक्टोरिया क्रॉस से मरणोपरांत सम्मानित किया.
Today we are remembering Indrasen Johar, popularly known as I.S. Johar, who was an Indian actor, writer, producer and director who excelled in comedic roles and is best known to international audiences for portraying Ghasim in the epic film classic Lawrence of Arabia. He acted in numerous Hindi films from the 1950s through to the early 1980s and appeared in international films such as Harry Black, Northwest Frontier, Lawrence of Arabia and Death on the Nile.
आज सुरूज बाई खांडे की पुण्यतिथि है। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध भरतरी गायिका थी। इन्हें 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव का हिस्सा बनने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें दाऊ रामचंद देशमुख सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए सुनते हैं इनकी एक प्रस्तुति।
Birthday of Indian music composer, singer, actor, screenwriter and film director Ravindra Prasad Patnaik, popularly known as R.P. Patnaik. He predominantly works in Telugu, Kannada and Tamil language films. He entered the film industry with a desire to become a film director but began his first career as a music director with the movie Nee Kosam. He has received 3 Filmfare awards consecutively. And now let's listen to a music to a song from this film, Nee Kosam.
ఎప్పుడు లేని ఆలోచనలు ఇప్పుడే కలిగను ఎందుకు నాలు నీకోసం నీకోసం ఈ లోకమిలా ఏదో కలలా నాకంతా కొత్తగా వింతగా కనిపిస్తూ ఉంది నీకోసం నీకోసం నీకోసం.
आज अभिनेता शहबाज खान का जन्मदिवस है। इनका असली नाम है हैदर खान। ये चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जैसे टेलीविजन धारावाहिकों में मुख्य भूमिकाएं निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने धरती पुत्र, जिद्दी, हिंदुस्तान की कसम और अर्जुन पंडित जैसी कई मुख्य फिल्मों में भी काम किया है।
टुडे वी आर रिमेम्बरिंग इंडियन स्पेस रिसर्च and former chairman of the ISRO, Udupi Ramachandra Rao, on his birth anniversary. He started his career as a cosmic ray scientist and worked under Dr. Vikram Sarabhai, which he continued at MIT. In association with the Jet Propulsion Laboratory Group, he was the first to establish the continuous nature of the solar wind and its effect on geomagnetism under Mariner 2 observations. Convinced of the imperative need to use space technology for rapid development, Rao undertook the responsibility for the establishment of satellite technology in India in 1972. He is also known as the Satellite Man of India. He pioneered India's first satellite launch, Aryabhatta, in 1975. He was elected as a fellow of many academies such as the Indian Academy of Sciences, Indian National Science Academy, National Academy of Sciences, among others, and was also a chairman of ISRO from 1984 to 1994. He was also the chairman of Governing Council of Physical Research Laboratory at Ahmedabad and Nehru Planetarium at Bengaluru and the chancellor of Indian Institute of Space Science and Technology at Thiruvananthapuram. He was awarded the Padma Bhushan by the Government of India in 1976 and Padma Vibhushan in 2017.
और आज जन्मदिवस है भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और निर्देशक पद्मा खन्ना का। ये 1970 और 1980 के दशक में मुख्य रूप से हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में नजर आई। इन्हें अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सौदागर में इनकी भूमिका और रामानंद सागर की महाकाव्य श्रृंखला रामायण में रानी कैकई के रूप में भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। ये एंटी रामा राव के साथ 2 तेलुगु फिल्मों दिसोदार कुल्लू और राजपुत्र रहस्यम में भी दिखाई दी। इन्होंने ओडिया फिल्म साक्षी गोपीनाथ में भी अभिनय किया। आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का एक गीत।
Also remembering legendary Marathi poet Mangesh Patgaonkar on his 14th birth anniversary. He started writing poems at the age of 14 and has 40 publications to his credit.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और रम्या को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
नमस्कार।